एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी एक मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विचारों की गहराइयों में उतर रहे हैं जिन्होंने सोचने के तरीके को ही कह सकते हैं बदल दिया, इमानुएल कांट।
हाँ, और उनकी जिस कृति पर हम आज बात करने वाले हैं वो है निर्णय का विवेचन या क्रिटिक ऑफ जजमेंट। नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है।
बिल्कुल लगता है ना, लेकिन असल में ये किताब उन सवालों से जुड़ी है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं।
हाँ, जैसे जब हम कोई बहुत खूबसूरत सूर्यास्त देखते हैं या कोई कमाल का गाना सुनते हैं तो वो हमें अच्छा क्यों लगता है? क्या ये बस अपनी अपनी पसंद की बात है?
या फिर जब हम प्रकृति को देखते हैं, मान लीजिए एक चिड़िया का घोंसला या जिसे बीज से पौधा उगता है, हमें क्यों लगता है कि इसमें कोई डिजाइन है, कोई मकसद छुपा है?
सही बात है। कांट की ये किताब इन्हीं अनुभवों को समझने की एक कोशिश है। ये सिर्फ फिलॉसफी की सूखी बातें नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये समझने का प्रयास है कि ये जो हमारी क्षमता है सुंदरता महसूस करने की या प्रकृति में उद्देश्य देखने की, ये हमारे ज्ञान से, हमारी नैतिकता से कैसे जुड़ती है।
और ये आज भी उतना ही जरूरी है समझना, क्योंकि ये हमारे इंसान होने के अनुभव का एक बहुत अहम हिस्सा है।
तो चलिए पहले थोड़ा सा इमैनुएल कांट के बारे में जान लेते हैं। 1724 से 1804 तक।
हाँ, जर्मनी के कोनिंग्सबर्ग शहर के थे और पश्चिमी दर्शन में तो इनका नाम मतलब बहुत ही बड़ा है। इन्होंने ज्ञान से लेकर नैतिकता तक कई चीजों पर बिल्कुल नए विचार दिए।
हाँ, और ये जो किताब है निर्णय का विवेचन, ये उनकी तीसरी बड़ी क्रिटिक थी। इससे पहले दो और आ चुकी थी।
जी, पहली थी शुद्ध तर्क का विवेचन यानी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। उसमें उन्होंने बताया कि हम क्या जान सकते हैं, हमारे ज्ञान की सीमाएं क्या हैं।
और दूसरी थी व्यावहारिक तर्क का विवेचन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। वो नैतिकता पर थी कि सही गलत का फैसला हम कैसे करते हैं, हमारी इच्छा की आजादी वगैरह।
और इन दोनों किताबों ने मिलकर जैसे दो अलग अलग दुनियाएं बना दी थीं। एक तरफ थी प्रकृति जो नियमों से बंधी है, जिसे विज्ञान समझता है,
और दूसरी तरफ थी हमारी आजादी, हमारी नैतिकता, हमारी मर्जी।
हाँ, और कांट को लगा कि इन दोनों के बीच में एक खाई सी है, एक गैप है।
कैसे जुड़ते हैं ये दोनों दुनियाएं, एक तरफ नियम, दूसरी तरफ आजादी?
बिल्कुल, और यहीं पर ये तीसरी किताब निर्णय का विवेचन आती है।
कांट का मानना था कि हमारी जो ये क्षमता है सुंदरता महसूस करने की और प्रकृति में एक उद्देश्य देखने की,
हाँ,
वही वो पुल है जो इन दो दुनियाओं को जोड़ता है। उन्हें लगा कि अपने पूरे फिलोसफिकल सिस्टम को पूरा करने के लिए इस तीसरी कड़ी को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मतलब इस किताब का मकसद है ये दिखाना कि हमारा ज्ञान, हमारी नैतिकता और हमारे ये जो अनुभव हैं सुंदरता के या प्रकृति में उद्देश्य देखने के, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं।
हाँ, और वो कहते हैं कि हमारी जो निर्णय करने की क्षमता है, जजमेंट, वो इसमें खास रोल निभाती है।
जजमेंट मतलब फैसला करना।
हाँ, पर यहाँ थोड़ा और गहरा मतलब है। कांट दो तरह के जजमेंट बताते हैं, ये समझना थोड़ा जरूरी है।
बताइए।
एक है निर्धारक निर्णय या डिटर्मिनेंट जजमेंट। ये सीधा है, आपके पास एक सामान्य नियम है और आप उसे किसी खास चीज पर लागू करते हैं।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे विज्ञान में होता है, नियम है सभी धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं। आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया, उसे गर्म किया, वो फैल गया, तो आपने नियम को उस खास चीज पर लगा दिया।
ठीक है, ये समझ आया।
लेकिन दूसरी तरह का निर्णय है चिंतनशील निर्णय या रिफ्लेक्टिव जजमेंट, और यही इस किताब का मेन फोकस है।
अच्छा, ये क्या है? ये तब होता है जब आप किसी अनोखी चीज को देखते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही सुंदर फूल या कोई ऐसा जीव जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। आपके पास उसके लिए कोई बना बनाया नियम या कैटेगरी नहीं है।
हाँ।
तब आपका दिमाग उस खास अनुभव से शुरू करके उसके लिए एक सामान्य सिद्धांत या नियम खोजने की कोशिश करता है। मतलब आप विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं।
ओ, तो जब हम कहते हैं ये सुंदर है तो ये एक तरह का चिंतनशील निर्णय हुआ।
बिल्कुल, या जब हम किसी जीव को देखकर सोचते हैं कि अरे वाह, ये कितनी बढ़िया डिजाइन है, वो भी चिंतनशील निर्णय है। आप एक मतलब ढूंढ रहे हैं।
तो किताब के दो मुख्य हिस्से हैं फिर?
जी हाँ, पहला हिस्सा सौंदर्य और उदात्त पर है, ब्यूटी और सब्लाइम, कि हम सुंदरता और विस्मय क्यों महसूस करते हैं।
और दूसरा?
दूसरा हिस्सा प्रकृति में उद्देश्य पर है, टीलियोलॉजी, कि हम जीवों और प्रकृति को ऐसे क्यों देखते हैं जैसे वो किसी मकसद के लिए बने हों।
ठीक है, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सौंदर्य। कांट क्या कहते हैं इसके बारे में?
पूछते हैं कि जब हम कहते हैं ये फूल सुंदर है तो असल में क्या हो रहा है हमारे दिमाग में?
क्या होता है?
वो कहते हैं कि ये एक खास तरह की खुशी है। ये खुशी तब मिलती है जब हमारी कल्पना यानी इमेजिनेशन और हमारी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग बिना किसी तयशुदा नियम के आपस में एक एक सामंजस्य बिठा लेती हैं, एक तरह का फ्री प्ले, एक खुला खेल खेलती हैं।
खुला खेल कल्पना और समझ का।
हाँ, और इस अनुभव की कुछ खास बातें हैं जिन्हें कांट क्षण या मूवमेंट्स कहते हैं। चार मूवमेंट्स हैं।
चार? अच्छा, पहला क्या?
पहला है निस्वार्थता, डिसइंटरेस्टेडनेस। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है।
निस्वार्थता सुंदरता में कैसे?
कांट कहते हैं कि जब आप किसी चीज को सच में सुंदर पाते हैं तो आपकी वो पसंद इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो चीज आपके किस काम आएगी या आपको उसे पाने की इच्छा है या नहीं।
मतलब
जैसे आप एक गुलाब को देखते हैं, उसकी सुंदरता का आनंद लेना एक बात है, और ये सोचना कि इसे तोड़कर घर ले जाऊं या ये बिकेगा कितने का, ये दूसरी बात है।
अच्छा, तो शुद्ध सौंदर्य का अनुभव वस्तु के होने से जुड़ा है, मेरे फायदे से नहीं।
बिल्कुल, ये सिर्फ अच्छा लगना जैसे आइसक्रीम अच्छी लगती है वैसा नहीं है, और न ही ये नैतिक रूप से अच्छा होने जैसा है। ये एक अलग ही तरह की मानसिक संतुष्टि है जो सिर्फ चीज के रूप फॉर्म से आती है।
ये तो काफी अलग सोच है। तो अगर मुझे कोई पेंटिंग इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वो मेरे पर्दे से मैच कर रही है, तो वो शुद्ध सौंदर्य नहीं हुआ।
कांट के हिसाब से नहीं, वो आपकी व्यक्तिगत पसंद या उपयोगिता से जुड़ा है। यहीं पर दूसरा क्षण आता है, व्यक्तिपरक सार्वभौमिकता।
व्यक्तिपरक सार्वभौमिकता, ये तो सुनने में ही विरोधाभासी है,
है ना? देखिए, निर्णय तो व्यक्तिगत है, मुझे सुंदर लग रहा है, लेकिन हम उम्मीद ऐसी करते हैं जैसे ये सबके लिए सच हो।
हाँ, ये तो है। हम कहते हैं ये गाना सुंदर है, ना कि ये गाना मुझे सुंदर लग रहा है।
बिल्कुल, हम ऐसे बोलते हैं जैसे ये एक वस्तुगत तथ्य हो। कांट कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये अनुभव हमारी उन बुनियादी मानसिक क्षमताओं, कल्पना और समझ के सामंजस्य पर आधारित है जो हम मानते हैं कि सभी इंसानों में एक जैसी होती हैं।
ओह, तो हम मानकर चलते हैं कि अगर किसी और का दिमाग भी ठीक से काम कर रहा है तो उसे भी ये सुंदर लगना चाहिए।
एक तरह से हाँ, हालांकि इसे साबित नहीं किया जा सकता, ये तर्क पर नहीं एहसास पर आधारित है।
ठीक है, ये थोड़ा समझ आ रहा है। तीसरा क्षण क्या है?
तीसरा है उद्देश्य के बिना उद्देश्यपूर्णता, पर्पसिवनेस विदाउट पर्पस।
ये भी बड़ा अजीब सा नाम है।
हाँ, इसका मतलब है कि सुंदर चीज ऐसी लगती है मानो उसे किसी खास मकसद से बड़े कायदे से डिजाइन किया गया हो।
अच्छा,
उसके सारे हिस्से एक दूसरे के साथ एकदम फिट लगते हैं, एक एक हार्मनी होती है, एक व्यवस्था दिखती है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसका असल मकसद क्या है।
कोई उदाहरण?
सोचिए एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर या किसी पक्षी के पंख का पैटर्न, वो एकदम परफेक्ट लगता है मानो किसी उद्देश्य से बनाया गया हो। पर किस लिए? आप बस उसके रूप को देखकर खुश होते हैं, आपको कोई निश्चित उद्देश्य बताने की जरूरत नहीं है। यही है उद्देश्य के बिना उद्देश्यपूर्णता।
मतलब उसकी बनावट ही अपने आप में एक उद्देश्य जैसी लगती है, भले उसका कोई बाहरी काम ना हो।
सही पकड़ा। और चौथा क्षण है आवश्यकता, नेसेसिटी।
आवश्यकता मतलब ये जरूरी है कि वो सुंदर हो?
नहीं, मतलब हमें ऐसा महसूस होता है कि दूसरों को भी इसे सुंदर मानना चाहिए। ये कोई लॉजिकल जरूरत नहीं है जिसे हम साबित कर सकें, ये एक अंदरूनी एहसास है।
अच्छा,
कांट इसे सामान्य बोध या सेंसेस कम्युनिस से जोड़ते हैं, मतलब महसूस करने और निर्णय लेने की एक साझा मानवीय क्षमता, एक तरह की कम्युनिटी फीलिंग जो सुंदरता के अनुभव से पैदा होती है।
तो ये थे सुंदरता के चार क्षण, निस्वार्थता, व्यक्तिपरक सार्वभौमिकता, उद्देश्य के बिना उद्देश्यपूर्णता और आवश्यकता। काफी गहरा है ये।
हाँ, और सुंदरता के बाद कांट एक और अनुभव की बात करते हैं, उदात्त।
उदात्त?
ये क्या है?
सुंदरता जैसा ही है?
नहीं, ये अलग है। सुंदरता अक्सर शांति, संतुलन, सीमा से जुड़ी होती है। उदात्त का अनुभव तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो बहुत बहुत विशाल हो या बहुत शक्तिशाली या भयानक,
जो हमें छोटा महसूस कराए।
हाँ, जो हमारी कल्पना की हद से परे हो, जो हमें अभिभूत कर दे। कांट दो तरह के उदात्त बताते हैं।
अच्छा, कौन कौन से?
पहला है गणितीय उदात्त, मैथमेटिकल सबलाइम। सोचिए आप रात में आसमान को देख रहे हैं, अनगिनत तारे, वो फैलाव, या किसी विशाल पहाड़ के सामने खड़े हैं।
हाँ।
आपकी कल्पना उसे पूरी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाती, आप अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन कांट कहते हैं ठीक इसी पल आपको अपनी तर्क शक्ति, अपनी रीजन का एहसास होता है।
रीजन का?
कैसे?
क्योंकि आपका तर्क अनंत जैसी चीजों के बारे में सोच सकता है, भले ही आपकी कल्पना उसे देख ना पाए, तो ये अनुभव आपकी एक उच्च क्षमता को दिखाता है। वाह, और दूसरा कौन सा?
दूसरा है गतिशील उदात्त, डायनामिकल सबलाइम। ये प्रकृति की भयानक शक्ति से जुड़ा है, जैसे कोई समुद्री तूफान, भूकंप या गरजता हुआ झरना।
जिसे देख के डर लगे?
हाँ, डर भी लगे और अपनी शारीरिक कमजोरी का एहसास भी हो। लेकिन अगर आप उसे एक सुरक्षित जगह से देख रहे हैं,
हाँ,
तो साथ ही आपको अपनी आंतरिक नैतिक शक्ति और स्वतंत्रता का भी बोध होता है कि प्रकृति आपके शरीर को नष्ट कर सकती है शायद, पर आपकी सोच को, आपकी नैतिकता को नहीं।
अच्छा, तो ये अनुभव एक तरह से हमारी मानवीय गरिमा, हमारी डिग्निटी को उजागर करता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि हम सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, हमारे अंदर कुछ उससे परे भी है। तो उदात्त का अनुभव हमें हमारी सीमाओं के साथ साथ हमारी अंदरूनी ताकत का भी एहसास कराता है।
ये तो बहुत बहुत गहरा विचार है। सुंदरता शांति देती है, उदात्त हमें हमारी महानता का एहसास कराता है, भले ही वो थोड़ा डरावना अनुभव हो।
हाँ, और पहले भाग के अंत में कांट सौंदर्य के निर्णयों में एक विरोधाभास की भी बात करते हैं, जिसे वो डायलेक्टिक कहते हैं, और उसका समाधान ढूंढते हैं। पर शायद अब हमें दूसरे भाग पर चलना चाहिए, प्रकृति में उद्देश्य वाले हिस्से पर।
हाँ बिल्कुल, तो दूसरा भाग है प्रयोजन मूलक निर्णय का विवेचन, क्रिटिक ऑफ टीलियोलॉजिकल जजमेंट। यहाँ बात प्रकृति की हो रही है, खासकर जीवित चीजों की।
जी, हम अक्सर कहते हैं ना कि आंखें देखने के लिए होती हैं या पेड़ की जड़ें पानी सोखने के लिए होती हैं। हम प्रकृति में एक उद्देश्य, एक डिजाइन देखते हैं।
हाँ बिल्कुल देखते हैं।
कांट पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इसका क्या मतलब है। वो प्राकृतिक उद्देश्य या नेचर्स वेके की बात करते हैं।
प्राकृतिक उद्देश्य, ये क्या है?
एक जीवित चीज, मान लीजिए एक पेड़, वो एक मशीन जैसे घड़ी से कैसे अलग है?
पेड़ खुद बढ़ता है, अपने जैसा दूसरा पेड़ पैदा कर सकता है, घड़ी नहीं कर सकती।
सही, और पेड़ का हर हिस्सा, जड़, तना, पत्ती, वो दूसरे हिस्सों के लिए साधन भी है और साध्य भी। वो एक दूसरे को बनाते और बनाए रखते हैं, वो खुद को संगठित करता है।
हाँ, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है।
बिल्कुल, इसे कांट स्व संगठन कहते हैं। वो मानते हैं कि हम जीवों को सिर्फ कलपुर्जों के जोड़ की तरह नहीं समझ सकते, हमें उन्हें मानो किसी उद्देश्य से बनाया गया हो ऐसे देखना पड़ता है, तभी उनकी पूरी कार्यप्रणाली समझ आती है।
लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सच में कोई डिजाइनर है? जैसे विज्ञान तो कहता है कि यह सब विकासवाद, एवोल्यूशन और भौतिक नियमों से हुआ है।
बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर कांट फिर एक द्वंद्ववाद, एक डायलेक्टिक की बात करते हैं। एक तरफ है विज्ञान का नजरिया, जो हर चीज की यांत्रिक व्याख्या, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढता है, ये जरूरी है।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ हमारा मन है, जो जीवों और प्रकृति की इस जटिल व्यवस्था में एक उद्देश्य, एक डिजाइन देखता है, खासकर जीवित चीजों में।
तो कौन सही है?
कांट कहते हैं कि ये दोनों विरोधी सच नहीं है। ये दुनिया को समझने के दो जरूरी तरीके हैं, दो नियामक सिद्धांत, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं।
नियामक सिद्धांत मतलब?
मतलब विज्ञान को हमेशा यांत्रिक कारण खोजने चाहिए, ये उसका काम है और उसे ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम जीवों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उद्देश्य की अवधारणा, ये सोचना कि इसका मकसद क्या है, ये हमें गाइड करता है, हमारी समझ को दिशा देता है।
तो हम ये साबित नहीं कर सकते कि प्रकृति का उद्देश्य है, पर उसे समझने के लिए ऐसा सोचना उपयोगी है।
बिल्कुल, ये एक तरह का एज इफ है। हम प्रकृति को ऐसे देखते हैं मानो उसका कोई उद्देश्य हो।
ठीक है, और फिर अंत में कांट इन सब बातों को नैतिकता से कैसे जोड़ते हैं? वो जो पुल बनाने की बात थी शुरू में।
हाँ, वो पुल, यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। कांट पूछते हैं कि अगर हम प्रकृति को एक उद्देश्यपूर्ण प्रणाली की तरह देखें भी, तो उसका अंतिम लक्ष्य, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या हो सकता है?
पूरी प्रकृति का अंतिम लक्ष्य, ये तो बड़ा सवाल है।
हाँ, और कांट का जवाब है मनुष्य।
मनुष्य क्यों?
लेकिन सिर्फ एक जैविक प्राणी के तौर पर नहीं, बल्कि एक नैतिक प्राणी, एक मॉरल एजेंट के तौर पर।
अच्छा।
क्योंकि केवल इंसान ही वो प्राणी है जो आजादी से अपने उद्देश्य चुन सकता है, जो नैतिक नियमों को समझ सकता है और उनका पालन करने का चुनाव कर सकता है। तो कांत का विचार थोड़ा ऐसा है कि प्रकृति ने एक तरह से हमें इसलिए विकसित किया ताकि हम नैतिकता को इस दुनिया में ला सकें, उसे संभव बना सकें। और संस्कृति यानी कल्चर वो जरिया है जिससे हम अपनी इस नैतिक क्षमता को विकसित करते हैं, उसे निखारते हैं।
तो इस तरह प्रकृति जो नियमों से बंधी लगती है वो स्वतंत्रता और नैतिकता को संभव बनाती है।
हाँ, इस तरह वो खाई पड़ जाती है। प्रकृति और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। निर्णय की हमारी क्षमता हमें ये देखने में मदद करती है।
कमाल है, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा सिंथेसिस है, एक जुड़ाव है। तो ये किताब सिर्फ सुंदरता या प्रकृति के बारे में नहीं है, ये तो इंसान होने के पूरे अनुभव को एक साथ पिरोने की कोशिश है।
बिल्कुल। अगर हम कुछ मुख्य संदेशों को समेटें तो क्या कहेंगे?
मेरे लिए एक बड़ी बात है मानवीय तर्क की एकता। कांट ये दिखाते हैं कि हमारा सोचना, जानना यानी विज्ञान, महसूस करना सौंदर्य, और नैतिक होना स्वतंत्रता, ये सब अलग अलग डब्बे नहीं हैं, ये सब जुड़े हुए हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और सौंदर्य का वो दोहरा चरित्र है तो व्यक्तिगत एहसास, पर उसमें एक सार्वभौमिकता का दावा छुपा है। ये हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है।
बिल्कुल। और मुझे वो उद्देश्य के बिना उद्देश्य पूर्णता वाला विचार बहुत पसंद आया। हम चीजों में व्यवस्था और सुंदरता खोजते हैं, भले ही उनका कोई साफ मतलब या काम ना हो।
जैसे हम किसी कलाकृति को देखते हैं या प्रकृति में किसी पैटर्न को।
हाँ, जैसे भारत में रंगोली बनाते हैं या कपड़ों पर कशीदाकारी करते हैं, उसका कोई सीधा काम नहीं है, पर उसका रूप, उसका डिजाइन ही आनंद देता है।
सही बात है। और उद्दात्त का अनुभव और मानव की गरिमा, ये विचार कि प्रकृति की विशालता या शक्ति का सामना हमें डरा सकता है, पर साथ ही हमारी अंदरूनी नैतिक ताकत का एहसास भी करा सकता है,
ये बहुत प्रेरणा देता है। जीवन की मुश्किलों में ये याद रखना कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो परिस्थितियों से बड़ा है।
और आखिर में चिंतनशील निर्णय की शक्ति, ये जो हमारी क्षमता है पैटर्न खोजने की, मतलब निकालने की, चीजों को जोड़ने की, ये हमें सिर्फ कैलकुलेटिंग मशीन या इंस्टिंक्ट्स पर चलने वाले जानवर से ज्यादा बनाती है।
हाँ, ये हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे समझ का आधार है।
कांट की भाषा भले थोड़ी मुश्किल लगे, पर उनके कुछ विचार बहुत यादगार हैं। जैसे उन्होंने कहा, सौंदर्य किसी वस्तु के उद्देश्य पूर्णता का रूप है, जहां तक इसे बिना किसी उद्देश्य के प्रतिनिधित्व के उसमें महसूस किया जाता है।
मतलब सुंदरता चीज के डिजाइन में है, उसके काम में नहीं। और वो डिजाइन ऐसा लगता है मानो किसी मकसद से बना हो, पर वो मकसद हमें पता नहीं।
या ये सुंदर वह है जो बिना किसी अवधारणा के सार्वभौमिक रूप से प्रसन्न करता है।
वही बात है। तो एहसास पर लगता है सबके लिए सच होना चाहिए बिना किसी लॉजिक के।
और उदात्त पर, उदात्त वह है जिसे केवल सोचने की क्षमता ही इंद्रियों के हर मानक से परे मन की एक क्षमता को दर्शाती है।
कि जब हमारी कल्पना हार मान लेती है तब हमारा तर्क हमारी ऊंची उड़ान दिखाता है।
और कला पर उनका वो मशहूर विचार, प्रतिभा वह जनजात मानसिक स्वभाव है जिसके माध्यम से प्रकृति कला को नियम देती है।
मतलब जीनियस नियमों का पालन नहीं करता, वो नए नियम बनाता है। उसकी कला में प्रकृति जैसी मौलिकता होती है।
ये सब सुनने में बड़ा दार्शनिक लगता है, पर इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी हो सकता है ना?
ज्यादा गहराई से देखना सीख सकते हैं। अगली बार जब कोई पेंटिंग देखें या संगीत सुने तो सिर्फ ये ना सोचें कि पसंद आया या नहीं आया।
हाँ, बल्कि उसके रूप पर, उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। रंगों का मेल, आवाजों का उतार चढ़ाव, बनावट, उसमें जो हार्मनी है या जो तनाव है उसे महसूस करने की कोशिश करें।
और पर्यावरण के प्रति हमारा नजरिया भी बदल सकता है। अगर हम प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल की चीज ना मानकर एक जटिल, आपस में जुड़ी हुई, उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था की तरह देखें,
तो शायद हम उसका ज्यादा सम्मान करेंगे। नदियों, पहाड़ों, जंगलों को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि एक बड़े अद्भुत डिजाइन का हिस्सा मानेंगे जिसकी अपनी एक अहमियत है।
और रचनात्मकता, कांट की प्रतिभा वाली बात हमें याद दिलाती है कि नया सोचना, लीक से हटकर समाधान खोजना कितना जरूरी है।
हाँ, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या रोजमर्रा की जिंदगी की कोई समस्या, वो मौलिकता, वो नया सामंजस्य खोजना
और मुश्किल हालात से निपटने में भी शायद मदद मिले। उदात्त का सिद्धांत याद दिलाता है कि बड़ी चुनौतियों का सामना हमें अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास करा सकता है।
बिल्कुल। तो संक्षेप में, कांट के ये विचार हमें दुनिया को और शायद खुद को भी थोड़ा ज्यादा गहराई से, ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद कर सकते हैं।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख, या कहूँ सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सुंदरता या विस्मय जैसी चीजें, जिन्हें हम अक्सर बस एक फीलिंग मानकर छोड़ देते हैं,
हाँ,
वो असल में कितनी गहरी हैं। वो हमारी समझ, हमारी चेतना की बनावट और दुनिया में हमारी जगह के बारे में कितना कुछ बताती हैं। ये सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने का, दुनिया से जुड़ने का एक बहुत ही बुनियादी तरीका है।
और मुझे वो पुल बनाने वाला विचार सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, कैसे हमारे निर्णय की क्षमता, खासकर सौंदर्य और उद्देश्य को लेकर, विज्ञान की दुनिया और नैतिकता की दुनिया को जोड़ती है।
हाँ, वो कनेक्शन
टिल कितना बहुआयामी और कितना अद्भुत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।